हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम आपके होस्ट, मैं हूं सागर
और मैं हूं चर्चिल,
और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक टू टॉक अबाउट, जिससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज, कुछ एडवाइस, हमारे कुछ एडवेंचर्स हम आपसे शेयर करेंगे।
एंगर, फ्रस्ट्रेशन, लोनलीनेस, इस तरह के बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस हमें सराउंड कर लेते हैं जब हमारा हार्ट ब्रेक होता है। जब दिल टूटता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि ये पेन कभी ख़त्म ही नहीं होगा। बट क्या इस अंधेरी टनल के आगे कोई उजाला है, और क्या हम अपने ब्रोकन हार्ट को मेंड कर सकते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे हम आज के एपिसोड में।
एंड बिफोर वी गो हेड, क्या आपका दिल कभी टूटा है? क्या किसी ने आपके साथ धोखा किया है, या आपका कभी ब्रेकअप हुआ है? अगर हाँ तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड शेयर विद अस कि किस तरह से आपने इस चीज से डील किया, या करेंटली आप उससे डील कर रहे
हैं। एंड विद दैट लेट्स बिगिन टुडेज एपिसोड,
लेट्स गो राइट अहेड।
सागर, हार्ट ब्रेक भले ही किसी भी कारण से हुआ हो, हमारे पार्टनर ने हमारे पे चीट कर लिया हो, या किसी के साथ हम रहना चाहते हैं पर फैमिली की वजह से नहीं रह पा रहे हो, या कोई और कारण भी हो सकता है, बट हम सभी ने किसी ना किसी फॉर्मेट में दिल का टूटना जरूर देखा है। और जब दिल टूटता है तो ऐसा लगता है कि लाइफ ख़त्म सी हो गई, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, और ऐसा लगता है कि जो पेन अंदर है, जो इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी है, कभी ख़त्म ही नहीं होगी।
एंड सरप्राइजिंगली, हमारा दिल अगर पहली बार टूटता है तो तब तो हमें बुरा लगता ही है, बट जितनी बार वो टूटता जाता है उतनी बार हमें और बुरा लगता जाता है। सो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने वो चीज़ कर ली तो नाउ यू हैव लिव्ड इट और इसलिए नेक्स्ट टाइम इट वुड बी ईजियर। इट्स डेफिनेटली अ बिट ईजियर, पर फिर भी हमें बुरा तो लगता ही है, उससे मूव ऑन करने में टाइम भी उतना ही लगता है।
एंड सागर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब दिल टूटता है तो हमें लगता है कि दो दिन बाद भी हमें बुरा क्यों लग रहा है, दो हफ्ते बाद भी हमें बुरा क्यों लग रहा है। बट अगर आपके हाथ में फ्रैक्चर हुआ होता तो क्या आप उस फ्रैक्चर को ठीक होने के लिए 1 से 2 महीने नहीं देते? बट जब कोई इस तरह का पेन, जो कि साइकोलॉजिकल होता है, अंदर होता है, सोल को कोई पेन हो रहा था, तो हम उसे मेंड करने का टाइम नहीं देते हैं। एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है तो उसे हील होने में टाइम लगेगा, और ये टाइम कोई लगना गलत बात नहीं है। अगर आपके हाथ में फ्रैक्चर हुआ होता या आपका एक्सीडेंट होता तो भी आपको हील करने में 1 महीना 2 महीना लगते, टोटली नॉर्मल होने में टाइम लगता। सो गिव योरसेल्फ टाइम। अगर आपको पेन हो रहा है, अगर आपको सैडनेस फील हो रही है, आपको हर्ट फील हो रहा है, आपको एंगर है, इट इज़ परफेक्टली ओके टू फील ऑल ऑफ दोज इमोशंस। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट डिस्टिंक्शन। हम उन सभी नेगेटिव इमोशंस से भागने की कोशिश करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं,
right.
और जितना ज़्यादा हम उनसे बचने की कोशिश करते हैं, आप नोटिस करेंगे वो उतना ज़्यादा एग्रीवेट होके, उतना ज़्यादा निकल के आते हैं। आप जितना उन्हें दबाने की कोशिश करेंगे वो उतना ज़्यादा सरफेस होंगे। अ बेटर वे टू डील विद इट इज़ कि आप उन्हें फील करने की कोशिश करें, वो हर्ट, एंगर, जो इमोशंस आ रहे हैं, आप उन्हें एक्चुअली एज एन ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए कि आपको एक्चुअली लग कैसा रहा है। अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो आप ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए कि आपके मन में थॉट्स क्या चल रहे हैं, उन्हें लिखने की कोशिश कीजिए, किसी से शेयर करने की कोशिश कीजिए। एंड जितना ज़्यादा आप ये करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि आपके अंदर दबे हुए जो पूरे इमोशंस हैं वो बाहर निकल रहे हैं,
right.
और एक बार जब गुब्बार बाहर निकल जाता है, देन यू वुड फाइंड कि आपकी हीलिंग जर्नी बिगिन हो सकती है।
एंड इट डज़ टेक टाइम, और ये एडवाइस शायद सबसे ओल्डेस्ट एडवाइस है कि अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ है तो सिर्फ समय दो एंड इट विल बी ओके। एंड इसलिए कई लोग इससे पिस्ड ऑफ भी हो जाते हैं कि यार अब 5 साल हो चुके हैं बट आई एम स्टिल नॉट एबल टू मूव ऑन, अब 4-5 साल हो गए, मैं दूसरे रिलेशनशिप में आ गया हूँ, एंड येट आई स्टिल फील समथिंग फॉर दैट अदर पर्सन एंड सो ऑन। सो दैट इज़ परफेक्टली नॉर्मल। ये मुझे भी बहुत समय बाद समझ में आया था कि ऐसा फील करना बहुत नॉर्मल है। जब तक हम अपने इमोशंस को कम्प्लीटली लिव नहीं कर चुके, उनको एक्सप्रेस करके उनसे उनको लेट गो नहीं कर चुके, तब तक हमें बुरा लगता ही रहता है। एंड दैट इज ऑल्सो हिंट कि अगर आपको बहुत टाइम हो गया है एंड यू आर स्टिल नॉट एबल टू मूव ऑन, तो इट्स अ गुड टाइम टू थिंक अबाउट कि कोई ऐसा इमोशन, कोई ऐसा एंगर है जो आप अभी तक निकाल नहीं पाए, एंड इसलिए उस पर आप फोकस करके अपने आप को कन्फ्रंट कर सकते हैं कि वॉट एग्जैक्टली आर यू फीलिंग। एंड जो भी आपको पता पड़ता है उसमें से, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो गुस्सा आप उसी पर्सन पे निकालें जिससे आप गुस्सा हैं, बट एटलीस्ट उसको अगर आप एक्नॉलेज करेंगे तो आप एक्सेप्टेंस की तरफ बढ़ने लगेंगे। आपको समझ में आएगा कि हाँ, जो भी हुआ था वो बुरा तो था, बट नाउ यू हैव बिकम अ डिफरेंट पर्सन, यू आर मूविंग ऑन इन लाइफ। और वो जैसे ही एंगर या वो दुख या फिर वो गिल्ट इन सम केसेस एक्सप्रेस हो जाएगी तो आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे।
इनफैक्ट सागर, जो अगर फर्स्ट रूल ये है कि हीलिंग टेक्स टाइम, तो सेकंड रूल ये भी है कि इट वुड गेट ओवर। आपको आज इस पॉइंट पे कुछ भी लग सकता है कि ये पेन कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, सफरिंग कभी एंड नहीं होने वाली, बट ट्रस्ट मी, हम सभी ने हार्ट ब्रेक्स देखे हैं, एंड देयर कम्स अ डे जब आप उसे लेट गो कर पाते हैं और आप आगे बढ़ पाते हैं। इट माइट टेक 1 month, 2 months, 6 months, 2 years, बट इट वुड गेट ओवर। और जब आप ये रियलाइजेशन अपने अंदर लेके आते हैं कि जो पेन और सफरिंग है एक दिन ख़त्म हो जाएगा, तब आप थोड़ा बेटर तरीके से उस पूरी जर्नी को अप्रोच कर पाते हैं। जैसा कि आपने कहा सागर, के कई बार ऐसा होता है कि हम कई सालों तक उस सफरिंग को एंड नहीं कर पाते हैं
राइट
और मूव ओवर नहीं कर पाते। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम डीपली फील नहीं करना चाहते कि हमें हो क्या रहा है। हम बचने की कोशिश करते हैं, हम सप्रेस करने की कोशिश करते हैं अपने इमोशंस को। जब हार्ट ब्रेक होता है तो एक सबसे पहला कॉमन रिस्पॉन्स होता है चल दारू पीते हैं
राइट।
एंड जब भी आप इस तरह के किसी पेन को दारू में दबाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा सोशली एंगेज करने की कोशिश करते हैं, आप किसी बिट्रेल को इस फॉर्म में ट्रीट करने की कोशिश करते हैं कि अगर इसने मेरा दिल तोड़ा है तो मैं 10 लोगों से अफेयर कर लूंगा और बदला लेने की कोशिश करूंगा। जब भी इस तरह की नंबिंग टेक्निक्स आप यूज़ करते हैं, आप बहुत नेटफ्लिक्स देखने लग जाते हैं, आप पूरे टाइम टीवी और मोबाइल में घुसे रहते हैं और अपने आप को ऑक्यूपाइड रखते हैं नंब करने के चक्कर में ताकि आपका पेन नंब हो जाए, आप नोटिस करेंगे कि वो लंबा खिंचता जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका हार्ट पेन एक्चुअली में क्योर हो, आप बेटर हो पाए और आप इस पूरी साइकिल को एंड करें, सो बड़ा ज़रूरी है कि आप उसे एक्चुअली फील करें। अपने पेन को एक बार ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव कि आपके माइंड में थॉट्स क्या रहे हैं। अगर हर्ट की फीलिंग है तो क्या फीलिंग है। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ बिट्रेयल हुआ है, आपको धोखा मिला है, तो एग्जैक्टली आपके मन में क्या बातें चल रही हैं, उन्हें लिखने की कोशिश करें। और जितना ज़्यादा आप उन्हें लिखेंगे, जितना ज़्यादा आप उन्हें सरफेस अप होने देंगे, उतना बेटर आप फील करेंगे। आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, उसे निकलना तो है। आप उसे दबा दबा के बहुत मुश्किल से निकाल सकते हैं या आप उसे लेट आउट कर सकते हैं। और जैसे ही आप उस पूरी एनर्जी को लेट आउट कर देंगे, आप नोटिस करेंगे आपको बहुत लाइट लगने लग गए हैं। सो फील दोज इमोशंस एंड गेट ओवर विद देम।
एंड दिस इज लाइक टाइम ओनली, जैसे टाइम के बारे में कहा जाता है कि आपको बहुत टाइम लगेगा या इट टेक्स टाइम। सो बींग बिजी इज अनदर वेरी नॉर्मल एडवाइस जो हम सबको देते हैं कि जस्ट बी बिजी। और हम सबके लिए वो बिजी होने का या नम होने का अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग काम में बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं, दे ओवर वर्क अ लॉट एंड स्टे इन द ऑफिस फॉर लॉन्ग एंड ट्राई टू काइंड ऑफ स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट, ताकि वो घर जाएंगे ही नहीं तो उस बारे में सोचेंगे ही नहीं। कई बार हम जैसे कि आपने कहा अल्कोहल को यूज़ करते हैं या अदर ड्रग्स को इवन यूज़ करते हैं, हम जो आजकल के ड्रग्स हैं सोशल मीडिया या फिर नेटफ्लिक्स और इन चीज़ों को यूज़ करते हैं अपने आप को नम करने में, या फिर हम कोशिश करते हैं कि हम दूसरी चीज़ों में डूब जाए। जैसे कुछ लोग सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा सुनते हैं, दे कीप लिसनिंग टू द सेम सॉन्ग्स ओवर एंड ओवर एंड वो याद करके उसी लूप में घूमते रहते हैं। सो अ लॉट ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं इस पेन को नम करने में। बट फिजिकल पेन यहाँ पे आपको एक गाइडेंस देता है कि अगर आपको कोई फिजिकल पेन है, वो फिजिकल पेन आप जितनी देर तक इग्नोर करते रहेंगे वो उतना वर्स होता जाएगा, बिकॉज उसको आप इग्नोर कर रहे हैं, उसको आप दबाते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मॉडर्न प्रॉब्लम जो हम सबको होती है इस बैक पेन। अगर आप बैक पेन पे काम नहीं करो और उसको बहुत टाइम तक होने दो और किसी भी तरह से बस मूव लगा के काम चलाते रहो, तो कुछ टाइम तक तो ये वॉलनी और मूव आपको हेल्प करते हैं, बट देयर विल बी अ टाइम जब आपका बैक बोल देगा कि भाई अब बहुत हो गया, अब मेरे को फुल दर्द ही देना है तुमको एंड आई एम नॉट गोना लेट यू एस्केप। आपकी फीलिंग्स के साथ एग्जैक्ट सेम चीज़ होगी। आप जितना उनको दबाते रहेंगे, जितना उनको इन सब टेक्निक से इग्नोर करने की कोशिश करते रहेंगे, इन सब ट्रिक्स को लगाते रहेंगे ताकि आप उस बारे में सोचें नहीं, कभी ना कभी वो बैंडेड आपके अगेंस्ट काम करेगा और फिर जहां पे सिर्फ छोटा सा घाव था वो बहुत बड़ा घाव बन जाएगा एंड बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो वॉट एवर हैपन्स इन फिजिकल पेन, द सेम थिंग विल हैपन विद इमोशनल पेन एज वेल। तो उससे डील करना, उसको फेस करना हमेशा ज़्यादा अच्छा एडवाइस होता है।
इनफैक्ट सागर, देयर इज अ क्लासिकल डिस्टिंक्शन। जब हम बात करते हैं कि आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं यूज़ करने चाहिए, हम कभी ये नहीं बोल रहे कि आपको प्रोग्रेस नहीं करना चाहिए। आपको प्रोग्रेस डेफिनेटली करना चाहिए एंड देयर इज अ डिस्टिंक्शन। जब आपका हार्ट ब्रेक हुआ होता है तो अगर आप प्रोग्रेस करते हैं, आप ग्रोथ की तरफ जाते हैं, तो वो हीलिंग में हेल्प करता है। बट अगर आप डिस्ट्रैक्शंस यूज़ करते हैं तब वो हीलिंग को रोकता है। जैसा कि आपने कहा कि अगर आप मूव लगाते हैं तो आप नंब तो कर देते हैं उस कुछ समय के लिए उस पेन को, पर जैसे ही मूव का असर खत्म होता है वापस वो पेन बबल अप हो जाता है।
राइट,
द अपोजिट हैपन्स जब आप ग्रो करने की कोशिश करते हैं। तो इंस्टेड अगर आप अपने बैक को स्ट्रांग करने की कोशिश करेंगे तो उस वक्त तो थोड़ी तकलीफ होगी, अगर आप बैक की एक्सरसाइजेस करेंगे, आप फिजियोथेरेपी लेंगे।
राइट,
बट जैसे ही वो एक्सरसाइज करके आप बाहर निकलेंगे तो एक हफ्ते बाद, दो हफ्ते बाद, क्योंकि आप ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, आप ज़्यादा ग्रो कर गए हैं, अब वो पेन अपने आप सबसाइड होता जाएगा क्योंकि आपकी मसल्स रिकवर कर गई हैं। एंड यहीं पर डिस्टिंक्शन आता है। अगर आप इस तरह के किसी हार्ट ब्रेक से स्ट्रगल कर रहे हैं, आपका दिल टूटा है, तो अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कीजिए, अपने ऊपर वर्क करने की कोशिश कीजिए, अपनी बॉडी पे, अपने माइंड पे, अपने सोल पे वर्क करने की कोशिश कीजिए, मेडिटेट करने की कोशिश कीजिए, योगा करने की कोशिश कीजिए, कोई भी ऐसा तरीका जिससे आप बेटर पर्सन बन सकते हैं वो करने की कोशिश कीजिए। और जितना ज़्यादा आप ये करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि अब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, आपकी सेल्फ इमेज थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है, क्योंकि आपको लगता है यू आर अ बेटर पर्सन एंड यू कैन इनवाइट बेटर पीपल इन योर लाइफ। एंड ये बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है। आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है पर अपने आप को इस तरह से इन्वॉल्व करना है ताकि आप ग्रो कर सके।
सो सेट अ गोल, ऐसा नहीं है कि आप लाइफ में आगे बढ़ना बंद कर देंगे, बट यहाँ पे कीवर्ड्स है ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। तो अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो वेरी मच चांसेस आर कि जो पर्सन आपकी लाइफ में पहले था वो वापस नहीं आने वाला है। तो जब भी आप गोल सेट कर रहे हैं या कोई भी चीज़ पिकअप कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिए कि कहीं भी आपका नैरेटिव या आपके माइंड में ये बात नहीं है कि मैं ये कर लूँगा तो फिर वो पर्सन वापस आ जाएगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पास्ट में वापस नहीं जा रहे हैं, आप फ्यूचर में आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका हर गोल, आपकी हर चीज़ आपको आगे बढ़ने में हेल्प करनी चाहिए। हम कहीं भी ये नहीं करना चाहते कि हम एक्सपेक्ट करें कि सेम पर्सन हमारे लाइफ में वापस आ जाए। ऐसा करना आपके लिए डिफिकल्ट तो होगा ही, अगर वो हो भी जाएगा तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सेटिंग गोल्स एंड प्रोग्रेसिंग इन लाइफ, इट सिंपली मीन्स कि आप खुद पे काम करके अपने आप को बेटर कर रहे हैं व्हाइल यू वेट फॉर द राइट पर्सन टू अराइव इन योर लाइफ।
एंड सागर, ये बहुत ज़रूरी भी है, अगर हम उसी पर्सन को इम्प्रेस करने के लिए, उसी को वापस लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो हम एक फ्लॉड गोल की तरफ वर्क कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में आप उस पर्सन से वापस मिले और आप दोनों ग्रो कर चुके हैं और अब आप उस जगह जहाँ आप एक साथ हो सकते हैं, बट उसी पर्सन को वापस लाने की जो कोशिश होती है उसमें लिया गया हर एक्शन आपको गलत डायरेक्शन में ही लेके जाएगा, क्योंकि आपका गोल ही गलत है। सो ज़रूर ध्यान रखिए कि आप अपने आप को बेहतर बना रहे हैं ताकि आपको एक बेहतर इंसान मिल सके। हो सकता है समय के साथ वही इंसान बेहतर होकर आपको मिल जाए, बट दैट शुड नॉट बी अ डिजायर्ड आउटकम। एक और चीज़ सागर मुझे लगती है वो ये होता है कि जब भी आप इस तरह के किसी ब्रेकअप से, हार्ट ब्रेक से डील करते हैं, और पर्टिकुलरली अगर आपको किसी ने चीट किया होता है, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है। वो एनर्जी आप एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंगर, हर्ट या किस तरह के नेगेटिव इमोशंस में, बट अगर आप नोटिस करेंगे तो एनर्जी इन इट्सेल्फ इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। एनर्जी का खुद का कोई नेचर नहीं होता है, जस्ट एज इलेक्ट्रिसिटी का खुद का कोई नेचर नहीं होता। आप इलेक्ट्रिसिटी से फूड कुक कर सकते हैं, अपने एटमॉस्फेयर को कोल्ड कर सकते हैं, लाइट चालू कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम आप इलेक्ट्रिसिटी को लोगों को शॉक देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी एक टाइम पे जान ले भी सकती है और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी जान दे भी सकती है। उसी तरह जब आपके साथ हार्ट ब्रेक होता है, और पर्टिकुलरली उस फॉर्म ऑफ हार्ट ब्रेक होता है जहाँ पे आपको किसी ने चीट किया है, तो आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है। उस एनर्जी को आप कैसे यूज़ करने वाले हैं वो डिफाइन कि आप लाइफ में कहाँ जाएंगे। बहुत से लोग उस एनर्जी को नम करते हैं, और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, इज नॉट अ गुड वे टू डील विद दैट एनर्जी। बहुत से लोग उसको डिस्ट्रक्टिव वेज में यूज़ करते हैं कि वो दूसरों को बुरा बोलने में, दूसरों को हर्ट करने में, सामने वाले को से रिवेंज लेने में उस एनर्जी को यूज़ करते हैं। अगेन आप नोटिस करेंगे कि जितना ज़्यादा आप रिवेंज लेने के लिए कोशिश करते हैं, वो एनर्जी से आपको कोई फायदा नहीं होता, और कभी भी आपके अंदर आपको क्लोजर नहीं मिलता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप उसी एनर्जी को यूज़ करेंगे अपने आप को बेटर बनाने के लिए, तो आप काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। सागर, आप खुद एक आर्टिस्ट हो, और आपने सुना भी होगा कि हर आर्टिस्ट का कुछ ना कुछ एक बहुत ही सैड ब्रेकअप रहता है, उनका दिल कहीं ना कहीं टूटा होता है, और उसी एनर्जी को लूज करके उन्होंने अपने आर्ट को फ्लरिश करने में कोशिश की थी। आर्टिस्ट के केस में ये चीज़ बहुत विजिबली दिखती है, बट अगर आप नोटिस करेंगे तो ये सभी चीज़ें हमारे साथ भी होती है। कई बार कोई ऐसा हर्टफुल इवेंट हमारी लाइफ में होता है जो हमें बहुत मोटिवेट कर देता है अपने आप को बेटर बनाने के लिए। दिस इज द सेम फॉर्म ऑफ हर्टफुल इवेंट जो हमारे साथ वापस हुआ है, और उसकी एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में ज़्यादा हैप्पीनेस, ज़्यादा ग्रोथ, ज़्यादा सक्सेस लेके आने के लिए। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट एनर्जी टू फ्यूल नेगेटिविटी, आप उस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं बहुत सारा पॉजिटिव अपनी लाइफ में लाने के लिए। आपको जस्ट उस एनर्जी को चैनलाइज करना है इन अ बेटर डायरेक्शन।
और जब भी ये एनर्जी हमारे अंदर बबल होती है तो हम एक पर्टिकुलर थॉट लूप में भी जाते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ होगा, या उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, एंड सो ऑन। एंड अक्सर व्हाट वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर इज अ रीज़न, एंड वी आर लुकिंग फॉर क्लोजर, कि किसी तरह से हमें कोई एक स्पेसिफिक रीज़न मिल जाए जिससे वो बात खत्म हो जाए एंड वी कैन मूव ऑन। एंड अनफॉर्चुनेटली चांसेस आर कि क्लोजर आपको सामने वाले पर्सन से नहीं मिल सकता है। हो सकता है कि उसने आपको चीट किया हो या नहीं किया हो, पर नो मैटर उसने जो भी किया है उससे आपको क्लोजर मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कई बार आपको रीज़न पता चल जाता है एंड देन दैट रीज़न इज़ नॉट इनफ। कई बार आपको ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है जिससे आपको और बुरा फील होने लगता है। सो डू नॉट डिपेंड ऑन दी अदर पर्सन टू गिव यू क्लोजर। एक मूवी है 500 डेज ऑफ समर, जिसमें जो लीड कैरेक्टर है उनका एक अफेयर होता है, काफ़ी लंबा चलता है, एंड देन दे ब्रेकअप। एंड काफ़ी आगे जाके उस मूवी में जो लड़की रहती है वही बंदे को कुछ रीजंस दे के उसको मूव ऑन करने में हेल्प करती है। नाउ दैट इज अ मूवी, रियल लाइफ में इसके चांसेस बहुत कम है। इनफैक्ट वन ऑफ द थिंग्स जो हम रिकमेंड करेंगे कि आप जिस भी पर्सन से आपका ब्रेकअप है उससे सारा कॉन्टैक्ट तोड़ लें। तो अगर आप उनसे सारा कॉन्टैक्ट तोड़ लेते हैं तो देर इज नो वे दैट यू कैन टॉक टू देम अबाउट गिविंग यू रीजंस, टॉक टू देम अबाउट गिविंग यू क्लोजर। तो अगर आपको उनसे कोई रीजंस नहीं मिलने वाले तो आप अपने माइंड में बार बार सोच के कोई नए रीजंस नहीं निकाल पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, हो सकता है इनफैक्ट कि आपकी भी उसमें कुछ गलती हो, बट वो चीज़ हो चुकी है, वो चीज़ पास्ट में है। एंड इसलिए इस एनर्जी को पॉजिटिव चीज़ों में यूज़ करना ज़रूरी है। जब भी आपको वो एंग्जाइटी लगे या वो एंगर लगे, तो एक बार उसको एक्नॉलेज करके एंड फिर अपने लाइफ के गोल्स की तरफ काम करना वुड एक्चुअली हेल्प यू गेट क्लोजर देन एक्चुअली ट्राइंग टू यू नो उस पर्सन से बात करके या उसके लाइफ के बारे में जान के।
एंड सागर, यहाँ पे दो चीज़ें मैं मेंशन करना चाहूँगा। पहला तो आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड, एंड ये चीज़ हम बहुत बार इग्नोर कर जाते हैं। कई बार ब्रेकअप होने के बाद भी हम दूसरे पर्सन की सोशल मीडिया प्रोफाइल स्कैन करते रहते हैं, एंड आज के समय में जब हर इंसान अपनी पूरी लाइफ सोशल मीडिया पर डालता है, आपको कभी क्लोजर नहीं मिल सकता। आप बार बार देखेंगे, आप उसे हंसता हुआ देखेंगे और आपको ज़्यादा बुरा लगेगा, आप उसे दुखी देखेंगे तो भी आपको बुरा लगेगा कि वो मेरे बिना दुखी है। सो देयर इज नो एंड टू इट। सो अगर आपका ब्रेकअप हो ही चुका है तो बेस्ट एडवाइस इज कि आप सारे फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन तोड़ दें, आप हर तरह के सोशल मीडिया से उन्हें ब्लॉक कर दें, आप एक्चुअली उनसे मिलना बंद कर दें। जिन भी सोशल सर्कल्स में आप जाते हैं जहाँ पे वो पर्सन है, उन सोशल सर्कल्स में तब तक जाना बंद कर दें जब तक आप पूरी तरह से हील नहीं हो चुके हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज फाइंडिंग रीजंस, जो आपने कहा। एंड मुझे लगता है कि जब हम रीजंस ढूंढने की कोशिश करते हैं तो कोई भी रीजन सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता।
दैट्स राइट।
एंड उसका कारण ये है कि उस हार्ट ब्रेक से जो हुआ वो पेन होता है वो इतना बड़ा होता है कि कोई भी रीज़न उसे जस्टिफाई नहीं कर पाता। तो अगर हम बोलते हैं कि हमें अच्छा लगना बंद हो गया था इसलिए हम मूव ऑन करना चाहते हैं, हम दूसरे पर्सन के साथ जाना चाहते हैं, और ये रीज़न अगर आप किसी को देंगे या आपको किसी ने ये रीज़न दिया है, तो आपको लगता है ये बहुत ही स्टूपिड रीज़न है, क्योंकि आपका पेन इतना बड़ा उसके सामने रीज़न बहुत छोटा है। एंड दिस हैपन्स विद ऑल द रीजंस। कोई इंसान कोई भी रीज़न आपको दे देगा, दैट रीज़न वुड नेवर ब्रिंग यू क्लोजर। एस्टर पर एक बहुत ही फेमस रिलेशनशिप काउंसलर हैं, एंड वो बेसिकली अफेयर्स के बारे में लिखती हैं, एंड वो उस बुक में बताती हैं कि जब कोई कपल उनके पास आता है जो कमिटेड रिलेशनशिप में रहता है और एक पार्टनर ने चीट किया होता है या वो दोनों साथ में नहीं रह पाते हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहली एडवाइस वो उन्हें देती है कि कभी भी वाई मत पूछना और कभी भी रिवेंज लेने की बात मत करना, क्योंकि अगर इन दोनों लूप्स में फंस गए तो आपको कभी भी क्लोजर नहीं मिल सकता। अगर आप हील करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस को वहीं ख़त्म कर देना पड़ेगा। उसने मुझ पर चीट क्यों किया, या उसने ऐसा क्यों किया, या मुझे क्यों हर्ट कर सकता था, इन सब का आंसर्स कोई भी इंसान कुछ भी दे दे वो कभी भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा। एट द सेम टाइम जितनी कोशिशें आप रिवेंज लेने की करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि वो हॉट कोल को हाथ में पकड़ने जैसा है। आप सामने वाले पे तो एक बार फेंकेंगे, पर जितनी ज़्यादा देर वो कोल आपके हाथ में रहेगा वो आपको उतना हर्ट करता रहेगा। सो डू नॉट फॉल इन द लूप के जहाँ पे आप रिवेंज लेना चाहते हैं या जहाँ पे आप वाई क्वेश्चंस भूल जाते हैं। एक्नॉलेज कि कुछ हो चुका है जो गलत था, जिससे मुझे बहुत हर्ट हुई है, एंड स्टार्ट ऑन विथ योर हीलिंग जर्नी।
हम बहुत बार एक्नॉलेज और एक्सेप्टेंस वर्ड यूज़ करें तो आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट कि एक्सेप्टेंस एक्नॉलेजमेंट होता क्या है एग्जैक्टली। कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ कोई चीज़ हो गई है, एंड इसलिए क्योंकि वो हो गई है हमें पता है एंड वी हैव एक्सेप्टेड इट, बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली ट्रू। हम बहुत साल निकाल देते हैं किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने में। जस्ट एज एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको आपकी स्कूल लाइफ को याद करने को कहूँ एंड आपसे कहूँ कि कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस जो आपको किसी टीचर या किसी फ्रेंड के साथ हुआ है उसको याद करने की कोशिश कीजिए, एंड देन देखिए कि उससे आपको थोड़ा हर्ट या थोड़ा अजीब लगता है कि नहीं। अगर आपको लगता है तो दैट इज़ अ की इंडिकेटर कि आपने अभी तक भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो जब इतने बचपन की चीज़ भी हम आगे भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हार्ट ब्रेक जैसी चीज़ को एक्सेप्ट कर पाना डेफिनेटली टाइम लेता है, थोड़ी स्किल्स लेता है, एंड सो ऑन। तो जो भी बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं दे आर लॉजिकल एंड यू प्रोबेबली नो अबाउट देम, बट ऑफकोर्स उसके बावजूद भी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे। उसका सिंपल रीज़न ये है कि इन चीज़ों पर काम करते करते आगे जाके एक्सेप्टेंस आएगा। एंड वाइल यू वेट फॉर एक्सेप्टेंस, वाइल यू डू दैट, मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ फिर भी उस तरह से शेप कर रहे हैं जैसे आप उसको फ्यूचर में जीना चाहते हैं। क्योंकि आप अगर आगे बढ़ रहे होंगे तो आपको कहीं ना कहीं पता पड़ जाएगा कि हाँ अब मैं उस चीज़ से मूव ऑन हो गया हूँ। बट जब तक वो टाइम आता है, जब तक वो एग्जैक्ट मोमेंट आता है, तब तक डोंट स्टॉप योर लाइफ। डू नॉट जस्ट वेट हियर फॉर थिंग्स टू बी ग्रेट एंड देन मूव फॉरवर्ड, जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड थिंग्स विल स्टार्ट टू बी गुड अगेन।
एंड सागर, ये बहुत अच्छी चीज़ आपने कही कि जस्ट स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड एंड ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और ये उसी चीज़ पे लेके आता है कि आपको ये बिलीफ लेके आनी पड़ेगी कि दिस सफरिंग विल गेट ओवर। एक चीज़ मुझे लगता है जो बहुत हेल्प करती है एक्सेप्टेंस लेके आने में, वो है जर्नलिंग। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से ओपन अप नहीं करते आप सकते जो जिसको आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, सो अनदर गुड वे टू ओपन अप एंड एक्सेप्ट ऑल दोज फीलिंग्स एंड एक्नॉलेज देम इज जर्नलिंग। जब भी आपको नेगेटिव फील होता है स्टार्ट राइटिंग, एंड इमीडिएटली एक दिन, दो दिन, एक हफ्ते में आपको उसके बेनिफिट्स नहीं दिखेंगे। बट जब आप कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करते हैं कि जब भी आपको नेगेटिव फील होता है, जब भी आपको एंगर आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, हर्ट फील होता है, आप लिखना चालू कर देते हैं, आफ्टर सम टाइम आप उसके बेनिफिट्स देखने लग जाएंगे। आपको रियलाइज़ होगा कि कैसे वो हर्ट धीरे धीरे कम होने लग गई है। फिर आप एक दिन उठा के अपना पुराना जर्नल पढ़ने की कोशिश करेंगे और आप नोटिस करेंगे कि ये जो चीज़ें लिखी थी ये एग्जैक्टली मैं अब इससे रिजेंबल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ ये पर्टिकुलर चीज़ें जो मैंने डे वन पे शायद लिखी थी, एंड दैट वुड बी अ इंडिकेटर कि आप मूव ऑन करने लग गए हैं। एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स आपको जर्नल लिखने के मौके काफ़ी कम मिलेंगे, एंड देन देर वुड कम अ टाइम जब आप एक्चुअली उस जर्नल को उठा के फेंक पाएंगे, क्योंकि आपको रियलाइज होगा कि आप कंप्लीटली मूव ऑन कर चुके हैं।
राइट,
सो यूज़ दिस टेक्निक। अगर आपको बहुत हर्ट फील होता है, बहुत एंगर फील होता है, स्टार्ट मेकिंग अ जर्नल जहाँ पे जब भी आपको बुरा लगे आप लिखते हैं।
एंड यू कैन डू अदर थिंग्स एज वेल। हम अक्सर जब पास्ट को याद करते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम उसकी पॉजिटिव या अच्छी बातें याद करें। हम क्यों कहते हैं कि चाइल्डहुड सबसे अच्छा था, क्योंकि हमें उसकी सिर्फ अच्छी ही चीज़ें याद आती हैं। तो अगर आपके साथ हार्ट ब्रेक हुआ भी है तो अनटिल दैट पॉइंट, उसके पहले आपकी रिलेशनशिप जैसी भी थी, वो मोमेंट्स आपको अच्छे लगे होंगे। तो वेन एवर यू डू रिकॉल दैट पर्सन, जब उनकी इमेज आपके माइंड में आती है, ट्राई टू स्माइल। इट विल बी अ वेरी फेक स्माइल, आपको वो स्माइल करने में तकलीफ होगी, आपको डेफिनेटली नेगेटिव बातें याद आएंगी, बट एटलीस्ट उस स्माइल से आप उसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी ऐड कर पाएंगे। एंड आई फाइंड इट अमेजिंग दैट देर आर पीपल जो अपने इस पेन पे हंस भी सकते हैं और उस पर स्टैंड अप कॉमेडी भी बना सकते हैं और दुनिया से उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो दी बेस्ट थिंग यू कैन डू इज टू लाफ एट योर ओन पेन। आपके साथ अगर ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ आप बैठ के बात कर सकते हैं इस बारे में और हंस सकते हैं कि हाँ यार देखो कैसा हो गया हमारे साथ, या फिर आप ऑनलाइन जाके स्टैंड अप कॉमेडी कॉमिक्स को देख सकते हैं जो ऑलरेडी अपनी ब्रेकअप्स के बारे में बात करके उसको फनी बना के आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इससे होता यह है कि आपको दो चीज़ें करने मिलती है, एक तो ऑफकोर्स अपने पेन पे लाफ करने से आप पॉजिटिव होते हो, एंड यू रियलाइज कि आप अकेले नहीं हो, देर आर अदर पीपल हु आर गोइंग थ्रू ऑलमोस्ट द सेम थिंग जो आपके साथ हुआ। आपका एक्सपीरियंस आपके लिए यूनिक तो है, बट इतना भी यूनिक नहीं है कि दुनिया में सिर्फ आपके साथ ही ये बुरा हुआ है। एंड दैट ऑल्सो आपको बहुत सारी पीस मिलती है, उससे शांति मिलती है, और आपको लगता है कि हाँ चलो ठीक है बुरा तो हुआ पर इतना भी बुरा नहीं हुआ और सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ।
एंड सागर, आपने जो पूरी बात की उसको एक सिंपल सेंटेंस में भी कहा जा सकता है, यू कैन बी सैड दैट इट एंडेड बट एट द सेम टाइम यू कैन बी वेरी हैप्पी दैट इट हैपेंड। आप हैप्पी भी हो सकते हैं कि वो बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स आपको जीने का मौका मिला था, एंड यू कैन बी ग्रेटफुल अबाउट दैट।
एंड वन लास्ट थिंग जो आई होप बहुत लोगों को होप देगा इज दिस सिंपल स्टेटमेंट जो मैंने एक यूट्यूब के गाने से चुराई है, एंड दैट इज कि अ हार्ट दैट इज ब्रोकन इज अ हार्ट दैट इज ओपन। अगर आपका दिल टूटा है तो अब उस दिल में किसी और के लिए जगह है। हो सकता है आपको करेंटली लग रहा हो कि नहीं मेरे दिल में मैं कभी किसी को जगह नहीं दूंगा, एंड दैट इज कंप्लीटली फाइन। आई होप कि 1 ईयर डाउन द लाइन, 2 ईयर्स डाउन द लाइन, 5 ईयर्स डाउन द लाइन, जब आप अपनी लाइफ वहां ले जा चुके होंगे जहां आप उसको ले जाना चाहते थे, यू विल रन इनटू समवन जो आपके लिए सही होगा, जो आपके लिए परफेक्ट होगा। एंड विद दैट होप वी कम टू एन एंड ऑफ दिस एपिसोड।
आई होप हमारे टिप्स आपको हेल्प करेंगे अपने ब्रोकन हार्ट को मेंड करने में। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो विद एज मैनी पीपल एज यू कैन, ताकि उनका भी ब्रोकन हार्ट मेंड हो सके और वो भी अपनी लाइफ में अच्छे से हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ सके।
विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम आपके होस्ट, मैं हूं सागर
और मैं हूं चर्चा
सिंह। बाय बाय
बाय बाय।